सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो यूजर्स है, यूजर बेस है, वो ज्यादातर यंग जनरेशन है, और फिर जो नशीली दवा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी युवा ही करते हैं। तो ये जो INCB की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें इस लिंक को क्या फाइंडिंग्स हैं उस लिंक के बारे में, हम उस बारे में जानना चाहेंगे।
सोशल मीडिया और ड्रग यूज का लिंक पाया गया है, काफी स्टडीज हुई हैं इससे, और इसमें पाया गया है कि जो भी सोशल इन्फ्लुएंसर जो आजकल बच्चे आ रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ वो और एक ग्रुप भी बना लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे कैनवेज का सब्जेक्ट है या कोई पदार्थ का नाम दे के या ग्रुप बना के, और वो लोगों को लाइक लेके और लोगों को उससे प्रभावित करते हैं अपने बातों से। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है। ऑफकोर्स युवा भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, और इसमें हमारे पास प्लांट बेस्ड ड्रग्स हैं जैसे कैनविस है और ओपियम है, दूसरी तरफ हमारे पास जो दवाइयाँ हैं सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो भी इस्तेमाल लोग करते हैं और खरीदते हैं, और ये कि जरिया बन गया एडवर्टाइजमेंट का, इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, और ये प्रॉपर जो सिस्टम है उसके बाहर से ये सब काम हो रहा है। तो इसलिए हम INCB ने चिंता जताई है कि इन इन प्लेटफॉर्म्स को खुद भी इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए, और मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो करना ही चाहिए, पर कंट्रीज को भी अपने हिसाब से अपने कुछ लेजिस्लेशन या रूल्स प्रोसीजर्स बनाए ताकि ये थोड़ी लीगल पुलिसिंग हो जाए इस इन प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि इसमें अगर ये बढ़ता जाएगा तो आगे की जनरेशन में भी अफेक्ट करेगा।
जो संगठित आपराधिक समूह है, ग्रुप्स हैं, वो नशीली दवाओं की और मादक पदार्थों की तस्करी से लाखों डॉलर कमाते हैं, उस पे सोसाइटल इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, वो किस तरह के प्रभाव हैं और कौन से देश इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं इस समस्या से?
देखिए आज के दौर में तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस परेशानी से प्रभावित नहीं है, क्योंकि कई देशों में अगर प्लांट्स हैं तो उनको उगाया जाता है, कैनबिस है, ओपियम है, और बाकी कोका प्लांट्स है साउथ अमेरिका वगैरह में, तो फिर उसके बाद जब उसके बाद ये केमिकल्स मिला के ये अपने दूसरे आगे का फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सारा तस्करी भी होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, इसलिए वो अब बाउंड्रीज तो रही नहीं, कंट्रीज की कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसी क्योंकि स्मगलर्स को तो कोई कंट्री की बाउंड्रीज से मतलब नहीं है, आपस में वो इतने संगठित हैं कि वो जो आपस का जो उनका ट्रस्ट है, उनका अंडरस्टैंडिंग है, इतनी स्ट्रांग है कि गवर्नमेंट्स में नहीं है इस तरह से, क्योंकि हमारे अपने अपने कानून हैं, अपने अपने दायरे हैं। मसलन जैसे अगर आप देखें तो जो प्रिकर्सर केमिकल्स हैं और दूसरे न्यू साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, मतलब नए तरह के ड्रग्स से निकल के आ रहे हैं जिसके जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है, मगर अब पाया गया है कि वो धीरे धीरे जहाँ हम बोर्ड की तरफ से रिकमेंड करते हैं कि स्केड्यूलिंग की जाए, भी लॉ में वो लाया जाए कि इसको कंट्रोल करना है, जैसे ही हम करते हैं फिर कोई नया पदार्थ आ जाता है और उस नए पदार्थ को पकड़ने के लिए टाइम लगता है, सीजर होते हैं जब जब्त होते हैं कंसाइनमेंट, तब पता चलता है कि ये आइटम भी इस्तेमाल हो रही है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग इसमें कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दोनों संगठित होकर, देशों को बिल्कुल ये नहीं सोचना कि हमारे देश है उनका देश है, हमें मिल के करना है, और सारी जो इंटेलिजेंस है, जो जानकारी है इन चीज़ों के बारे में, उसमें INCB का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और हम लोग एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग वगैरह भी बुलाते हैं, कॉम्पिटेंट नेशनल अथॉरिटीज जो जो अथॉरिटी बनाई गई है इस चीज़ को करने के लिए, उनसे बातचीत होती है और कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि ये चीज़ें डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन की बातें हैं, और उसमें फिर ये सब चीज़ें डिस्कस होकर शेयर होती हैं।
INCB इस दिशा में आपने जैसे बताया एफर्ट करता है, उनके साथ मीटिंग्स वगैरह होती हैं, क्या ये चुनौती डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा बड़ी है, क्या ये मानना सही होगा, या फिर जैसा आपने कहा कि इससे कोई भी अछूता नहीं है?
अछूता तो नहीं है, पर डेवलपिंग कंट्रीज के चैलेंज है, जो रिसोर्सेज हमें डेवलपमेंट के लिए और अपने विकास के लिए यूज करना चाहिए वो डाइवर्ट होता है। अगर इस तरह की गतिविधियां होंगी, स्मगलिंग होगी या ड्रग्स के आर पार होता रहेगा, तो डेफिनेटली हमारे विकास को, इसीलिए हमने इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज में जो अवैध पैसे हैं, जो ब्लैक मनी है, वो देखिए सारे जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, आर्म स्मगलिंग भी है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी है, बाकी तरह की तस्करी भी है, टैक्स इवेजन भी है, ये सारा ब्लैक मनी कहलाता है। मगर ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये सब आपस में मिले जुले हैं कहाँ कहीं किसी हद तक। तो इसलिए जो ड्रग ट्रैफिकर है वो और भी कारोबार इस तरह के करते हैं, और इसलिए वो ही पैसा जो एक से कमाते हैं वो दूसरे गलत काम में लगाते हैं। तो अगर ये जो सिनेरियो हम लोग समझ लें, तो ऐसा नहीं है कि 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है कि भाई सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग अलग से होती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलग से होती है। तो इसलिए इसलिए बहुत सारे संगठन भी बनाए हुए हैं हमने तो इस रिपोर्ट में इसके ऊपर एम्फेसिस देने के लिए, इस पर जोर देने के लिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है हमारा, UN 1988 कन्वेंशन है जो इसके बारे में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी बोलते हैं, और भी कई चीज़ें हैं, तो उनका मेन कार्य है इस चीज़ को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत करना एक्सेट्रा। मगर हम इसको इसलिए हाईलाइट किए हैं क्योंकि ड्रग इज आवर रियल, वी आर सपोज टू, हम लोग उसको कन्वेंशन को आगे ले जा रहे हैं, उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कन्वेंशन के तहत रिस्ट्रिक्शंस हैं अवैध दवाओं के बारे में, वो उससे जो धन लाभ होता है वो गलत तरीके से ना यूज हो।
सोशल मीडिया और यंग जनरेशन के बीच का जो लिंक है वो तो है ही, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि जो आपराधिक समूह है वो अन्य प्रकार के डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्य डिजिटल टूल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपने बताया कि एक मॉनिटरिंग ना सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज की तरफ से जरूरी है बल्कि कंट्रीज की भी तरफ से जरूरी है। उसके अलावा कौन से ऐसे रेगुलेशन हैं या कौन सी ऐसी अच्छी पॉलिसीज के या सक्सेसफुल पॉलिसीज के एग्जाम्पल्स हैं जो हम सोच सकते हैं?
हम लोग एक्चुअली हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ई वॉलेट कंपनीज हैं, और इवन केमिकल इंडस्ट्री है, वो और सरकारें जो अगर मिलकर बैठ के इस चीज को स्टडी करें कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए हम मीटिंग्स बुलाते हैं, दोनों तरफ से बुला के चर्चा होती है। और बहुत से हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हजारों गलत वेबसाइट्स और गलत जो लोग प्रचार कर रहे थे, बेच रहे थे केमिकल्स, उनको हटा दिया गया है। कई एग्जाम्पल्स हैं कोरिया में, इंडिया में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसलिए जितने ज्यादा कंट्रीज अपने प्राइवेट पार्टनर्स के साथ बैठ के बात करेंगे, तो हर कंट्री को अपना रास्ता ढूंढना होगा। हम वहाँ मदद के लिए तैयार हैं, कोई भी किसी तरह की भी गाइडेंस चाहिए होगी तो हम उसके लिए तैयार।
कुछ देशों में जो कैनबिस है उसको उसको कानूनी मान्यता, उसका वैधीकरण हो गया, लीगलाइजेशन हो गया है, वो चिंता का कारण क्यों होना चाहिए?
1961 में जब हमारा ये कन्वेंशन आया था, तो 186 के करीब कंट्रीज ने उसको रेटिफाई किया। इसका मतलब है कि उसको एक्सेप्ट किया, कंसेंसस हुआ कि भाई हाँ, हम लोग इन चीजों को कंट्रोल करेंगे। उसमें कैनबिस भी था, और कैनबिस आज तक भी शेड्यूल 1 में है, और इसमें पूरे रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। हमारे कन्वेंशन में क्लियरली लिखा है कि अगर आप कैनबिस उगाना चाहते हो, वो सिर्फ आप मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पज, आप तो और किसी चीज के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं आप उगा सकते। तो इसीलिए वो उसमें ये है कि एक एजेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हमारे इंडिया में ओपीएम एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जिसमें मैं भी रही हूँ एज नारकोटिक्स कमिश्नर। और फिर लाइसेंसेस बचते हैं, और उसका पूरा मतलब अकाउंटेबिलिटी होती है कि कितना आया है, और उसको जो गवर्नमेंट फैक्ट्री में जाता है ओपीएम, तो उसी तरह कैनविस के भी वही रेगुलेशंस लागू होते हैं। मगर अभी ये जो इन्होंने लीगलाइजेशन का दौर चलाया है, ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स और जो चीजें बना रहे हैं उसमें से कुछ तो रॉ ही बेच रहे हैं, कुछ उसमें एडिबल्स भी हैं, खाने बिस्किट बना के बेचते हैं, कुछ करते हैं। तो आपको पता है इसमें कैनबिस में टेट्राहाइड्रोकैनबिनॉल ये केमिकल है, बहुत खतरनाक है, उसी वजह से कंट्रोल है। तो उसमें कोई तो चेक नहीं कर रहा कि उसमें कितना THC है, हम क्या ले रहे हैं। जब आप दवा लेते हैं तो उसमें पहले क्लिनिकल ट्रायल होती है, उसकी पूरा पूरा मतलब रिसर्च होती है, तब जाके दवा दी जाती है। तो दवा के लिए भी कुछ रिसर्च होनी चाहिए। अगर कैनबिस से कहते हैं कि बेनिफिट्स हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा इंटरनेट पे ऑयल भी मिलता है, दवाइयाँ भी मिलती हैं, मगर ये सेल्फ सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेनिफिट्स हैं। इसमें अभी रिसर्च पूरी तरह नहीं हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में भी मैंने सुना है कि काफ़ी चीज़ें बिक रही हैं इंटरनेट पे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो और जब तक इस पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, ये देखिए कन्वेंशन क्यों बनाए गए, हेल्थ एंड वेलफेयर, स्वास्थ्य और मानव कल्याण के लिए। और अगर हम कोई चीज़ को बढ़ावा देते हैं जो इसके विरुद्ध जाता है, तो फिर ये कन्वेंशन के भी खिलाफ है, हमारे सोसाइटी के भी खिलाफ है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो लीगलाइजेशन है इसको रोका जाए, और हम जो जो कंट्रीज कर रहे हैं उनके साथ हम लोग वार्तालाप में हैं। IMCB के पास आर्टिकल 14 भी है, जहाँ पे पहले हम चांस देते हैं कंट्री को अपना बताने का कि क्यों कर रहे हैं, क्या रुख है, कैसा है। और अगर हमें लगे कि नहीं ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो हम फिर कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स में वोट होती है, उसमें फिर आगे जाकर से सैंक्शन दूसरी चीजें। आज तक तो कभी नहीं हुआ, मगर टाइम आ सकता है कि जब ये हो, या तो फिर अगर कंट्री चाहती है इसको लिबरलाइज करना, फिर इनको कमीशन में जाके खुद आपस में जैसे उन्होंने पहले तय किया था, अब तय कर सकते हैं कि ये करना है या नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि WHO के 2-3 स्टडीज आ चुकी हैं ऑन द इल इफेक्ट्स ऑफ कैनविस, कैनविस की जो हानिकारक जो रिजल्ट हैं। और अभी एक नया भी आने वाला है स्टडी, वो हमें बताया गया WHO ने। तो इसलिए जो भी किया जाए बहुत सोच समझ के करना चाहिए सारी कंट्रीज को। और हम तो यहाँ एक वॉच डॉग की तरह, पुलिसमैन की तरह हैं कि भाई ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम कंट्रीज में जाके देखते भी हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, ट्रीटमेंट सेंटर्स में भी कई तरह की चीज़ें हो रही हैं, जबरदस्ती लोगों को बंद कर देते हैं, ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन उनको एज क्रिमिनल माना जाता है, नॉट एज ए विक्टिम। तो अब जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक बीमारी हो जाती है, तो उनको शुरू में तो जब छोटी क्वांटिटीज हैं तो लॉ में आप उनको इतना सख्त, जरूरी नहीं है कन्वेंशन ये नहीं कहते हैं कि बंद कर लो, ये सब अपनी अपनी कंट्रीज ने अपने लॉज बनाए हैं। तो हम कहते हैं उनको रिहैबिलिटेशन, उनको ट्रीटमेंट, उनको समझाइए, उनको चांस दीजिए। और उसके बाद नहीं कोई करता, कोई तस्करी कर रहा, पैसा बना रहा, तो उसके लिए पेनल्टीज तो हार्श होंगी है। आपको पता होगा हमारे इंडिया में NDTS एक्ट में शुरू में सब चीज के लिए 10 साल की सजा थी, उसके बाद लॉ कमीशन ने उसको स्टडी किया और फिर स्मॉल क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट आया कि अगर इतने तक लेंगे तो वो फिर पर्सनल कंजम्पशन, और कोई भटक गया है, किसी ने एडिक्शन हो गया तो वो यूज करे, तो उनको एक चांस दिया जाए ट्रीटमेंट के लिए जाने के लिए। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक्चुअली फिनोमिनन है, और इसमें सारे देशों को मिलके इसको टैकल करना पड़ेगा।